147वीं कारिका से आरंभ हो रहा है पाठ। इस कारिका में स्मृति की रचना जो की गई है उसके आधार को बताया जा रहा है। कहते हैं कि अविघाताद विवृत्तानाम अभिख्या स्वप्नवत् श्रुतौ भाव तत्वन्तु विज्ञाय लिंगेभ्यो विहिता स्मृति ही। इसमें प्रथम पंक्ति के लास्ट में है स्वप्नवत् श्रुतौ, तो श्रुतौ को पहले ले लेंगे। श्रुतौ माने वेदे, वेद में विवृत्तानाम, विवृत्तानाम माने प्रकाशितानाम, वेद में जो प्रकाशित है उसको अविघातात माने उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए, माने वेद में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए उसी रूप में, मतलब अभिख्या, अभिख्या कहते हैं कथनम को। तो वेद में जो बातें बताई गई हैं उन बातों में बिना छेड़छाड़ किए उन बातों को जो है प्रकारांतर से कहना, दूसरे ढंग से कहना जो है वही है स्मृति। तो स्मृति में कुछ नया नहीं है, बल्कि वेद में जो बातें बताई गई हैं उन्हीं बातों का स्मृति के रूप में कथन किया जाता है। इसमें है भाव तत्वंतु विज्ञाय, तो वेद में जो प्रकाशित तत्व है उसको विज्ञाय माने उसको समझ करके, और लिंगेभ्यः, लिंगेभ्यः का अर्थ करना है हेतुभ्यः, कि हेतु के द्वारा, प्रमाण के द्वारा जो है जो बातें प्रमाणित हैं उन्हीं बातों को स्मृति में कहा गया। अब यहाँ पर जो है ना एक उदाहरण दिया है स्वप्नवत, स्वप्न की तरह। इसको ऐसे समझना है कि जैसे व्यक्ति स्वप्न में बहुत कुछ देखता है, सुनता है, करता है, और जागने के बाद उसी बात को जो है ना कहानी के रूप में किसी को सुनाता है, उसी तरह से वेद वाली जो बातें हैं, वेद की में जो बातें कही गई हैं उन बातों को स्मृतियों में जो है ना वह सरल भाषा में सरल प्रकार से जो है बताई जाती है। तो इसमें अभिख्या जो है ना उसका अर्थ हम कथन भी कर सकते हैं, और अभिख्या को हम संज्ञा भी कह सकते हैं, मतलब बोधक, बोधक वचन, ये भी अर्थ हम कर सकते हैं। अब 148वीं कारिका है काय बाग बुद्धि विषया ये मलाह समवस्थिताः चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रेस्तेषां विशुद्धयः। ये मलाह तेषां विशुद्धयः, जो मल है, जो दोष है उसकी विशुद्धि की जाती है, उस दोष का निराकरण किया जाता है। तो अब यहाँ दो प्रश्न हैं कि मल कौन कौन है और विशुद्धि किनके द्वारा किया जाता है। तो कहा कि काय बाग बुद्धि विषया मलाह, कुछ मल होते हैं काय संबंधी माने शरीर संबंधी, कुछ मल होते हैं बाक संबंधी माने वाणी संबंधी, और कुछ मल होते हैं बुद्धि संबंधी। तो तीन तरह के मल होते हैं, तीन तरह के दोष होते हैं, काय में रहने वाला, वचन में रहने वाला, वाणी में रहने वाला, और बुद्धि में रहने वाला। तो ये तीन तरह के मल हैं या दोष हैं, और इन तीनों के निराकरण के लिए तीन जो है ना शास्त्र हैं। काय मल के की विशुद्धि के लिए चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद आदि शास्त्र है। बाक मल जो है उस की विशुद्धि के लिए लक्षण शास्त्र है, लक्षण शास्त्र मतलब व्याकरण शास्त्र। आप जानते हैं कि लक्षण माने सूत्र होता है, तो यहाँ पर चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्र है। तो चिकित्सा शास्त्र हो गया आयुर्वेद आदि, लक्षण शास्त्र हो गया व्याकरण शास्त्र, और अध्यात्म शास्त्र जो है वह हो गया वेदांत, सांख्य योग, उपनिषद, ये सब। तो ये जो काय मल है उसका जो उसकी उससे जो है ना छुटकारा मिलता है चिकित्सा शास्त्र से, बांग मल जो है उससे छुटकारा मिलता है व्याकरण शास्त्र से, और बुद्धि मल जो है उससे छुटकारा मिलता है, किससे? अध्यात्म शास्त्र से। हमारे जो पतंजलि हुए हैं, वो पतंजलि ने तीनों तरह के मल का निराकरण करने के लिए तीनों तरह के शास्त्र में जो है ना अपना काम किया है। तो वही कहीं ना कहीं जो है ना इस कारिका के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि चरक ग्रंथ का नाम सुना होगा, वो पतंजलि ने लिखा है, महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है, और ये जो योग सूत्र है पातंजल योग सूत्र का आपने नाम सुना होगा, वो भी पतंजलि ने ही लिखा है। तो तीनों प्रकार के मल अर्थात दोष को निराकृत करने के लिए पतंजलि ने ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। अब 149वीं कारिका में नया प्रसंग ये है कि जो अपभ्रंश शब्द है, वह अपभ्रंश शब्द साक्षात बोधक होता है या फिर इनडायरेक्ट बोधक होता है, परंपराया बोधक होता है। तो एक तो ये प्रसंग है। दूसरा प्रसंग ये है कि साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था, एक ही शब्द जो है वह किसी अर्थ विशेष में साधु है और किसी अर्थ विशेष में जो है ना वह शब्द असाधु हो जाता है। तो अब इन्हीं बातों को हम अगली कारिका में पढ़ते हैं। 149वीं में अश्वगोण्यादय शब्दाः साधवो विषयांतरे। इस अश्व शब्द और गोणी शब्द, अश्व के जो है ना दो अर्थ होते हैं। एक अश्व मतलब तो होता है निर्धन, दरिद्र, उसको जो है ना अश्व कहा जाता है। तो जब निर्धन अर्थ में अश्व शब्द का प्रयोग होगा तो यह साधु है। ऐसे ही गोणी शब्द है, तो गोणी शब्द का अर्थ होता है गोदोहन पात्र, जिस बर्तन में गाय का दूध दुहा जाता है उसको हम गोणी कहते हैं। तो गोणी अर्थ में माने गोदोहन पात्र अर्थ में गोणी शब्द जो है साधु होता है। लेकिन यही अगर हम अन्य अर्थ में कर प्रयुक्त करें, जैसे घोड़ा अर्थ में अगर हम अश्व शब्द का प्रयोग करें, ऐसे ही जो है ना गाय अर्थ में गोणी शब्द का प्रयोग करें, तो वहाँ पर उस अर्थ में वह असाधु हो जाएगा। यही चीज इसमें कही गई है कि अश्व गोण्यादय शब्दाः साधवो विषयांतरे। अश्व गोणी आदि जो शब्द हैं वह साधु होते हैं विषयांतर में, माने अर्थांतर में, माने किसी अर्थ में ये साधु होते हैं और अन्य अर्थ में जो है वो असाधु होते हैं। निमित्त भेदात सर्वत्र, निमित्त के भेद से माने अर्थ के भेद से सर्वत्र हर जगह जो है साधुत्वंतु व्यवस्थितम, शब्द में साधुत्व है या नहीं है ये बात शास्त्रकारों ने जो है ना व्यवस्था बनाई हुई है कि किस अर्थ में कौन सा शब्द जो है वह साधु होगा। तो ये तो साधुत्व असाधुत्व के बारे में हुआ। और वो जो मैंने कहा था कि अपभ्रंश शब्द जो है साक्षात वाचक होता है कि परंपराया वाचक होता है, इसमें दो मत हैं। व्याकरणों का मत है कि साक्षात जो है वाचक होता है, साक्षात ही बोध करा देता है अपभ्रंश शब्द। लेकिन तार्किक जो है, न्यायिक जो है, वो साक्षात बोधक नहीं मानते, वो परंपराया बोधक मानते हैं, इनडायरेक्ट बोधक मानते हैं। तो उन्हीं का मत जो है ना 150वीं कारिका में बताया गया तार्किकों के मत को। ते साधुसु माने वे जो शब्द हैं, माने कौन से शब्द, अपभ्रंश शब्द जो है वो अनुमानेन प्रत्ययोत्पत्ति हेतव, वह अनुमान प्रमाण के द्वारा जो है बोधक होते हैं। प्रत्यय माने ज्ञान, ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, कारण बनते हैं अपभ्रंश शब्द, परंपराया कारण बनते हैं। अनुमान के द्वारा जो है ना ये डिसाइड होता है अर्थ के बारे में। तादात्म्यम उपगम्य इव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः, तादात्म्य को प्राप्त करके माने शब्द और अर्थ में तादात्म्य होता है, इसीलिए वह अपभ्रंश शब्द जो है शब्द शब्दार्थ का प्रकाशक होता है, शब्दार्थ का बोधक होता है। माने तादात्म्य होने के कारण ही जो है ना अपभ्रंश जो है बोध करा पाता है, अन्यथा अपभ्रंश बोध नहीं कराता, वो भी साक्षात बोध नहीं कराता है, वह अनुमान के द्वारा जो है अपभ्रंश शब्द से बोध होता है। अब 151वीं कारिका है, न शिष्टेह अनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः न जतः स्मृति शास्त्रे न तस्मात् साक्षात अवाचक। देख रहे हैं ना, साक्षात अवाचका माने अपभ्रंश जो है वह साक्षात अवाचक है, साक्षात बोध नहीं कराता बल्कि परंपराया बोध कराता है। कैसे होता है, तो पहले अपभ्रंश शब्द को सुना, उसको सुन करके जो है ना साधु शब्द का स्मरण हुआ, फिर उस साधु शब्द के द्वारा जो है ना अर्थ का बोध हुआ। इस तरह से परंपरा के द्वारा इनडायरेक्टली जो है ना बोधक होता है, ये तार्किकों का कहना है। और इसमें तर्क देते हैं कि शिष्टों के द्वारा, जैसे अमरकोश हो गया या पाणिनि अष्टाध्यायी हो गई, इन सबों के द्वारा साधु शब्द का तो जो है ना वर्णन इसमें मिलता है, साधु शब्द का विवेचन तो मिलता है, लेकिन अपभ्रंश शब्द का विवेचन नहीं मिलता है। तो चूंकि शिष्ट के द्वारा, आचार्यों के द्वारा साधु शब्द को ही बताया गया, अपभ्रंश शब्द को नहीं बताया गया, इसीलिए अपभ्रंश शब्द जो है साक्षात वाचक नहीं होते हैं। अब कारिका देखिए, न शिष्टेह अनुगम्यन्ते, शिष्ट के द्वारा न अनुगम्यन्ते माने न कथ्यन्ते, नहीं कहा जाता है क्या, पर्याया इव साधवा, कि साधु शब्द के पर्याय के रूप में अपभ्रंश शब्द को नहीं बताया जाता है। न यतः स्मृति शास्त्रे न, यतः माने जस्मात् कारणात्, स्मृति शास्त्र माने व्याकरण शास्त्र के द्वारा या कोश शास्त्र के द्वारा पर्याय की तरह अपभ्रंश नहीं बताया जाता है। तस्मात् कारणात् साक्षात अवाचका है, इस कारण से अपभ्रंश जो है साक्षात वाचक नहीं होते हैं। अब 152वीं कारिका, अम्बा अम्बा इति जदा बाला शिक्षमानोपभासते अव्यक्तम तद्विदान्ते न व्यक्ते भवति निश्चया। अब छोटा बच्चा है, उसको अम्बा अम्बा का उच्चारण सिखाएंगे और वो बच्चा जो है ना अम्मा अम्मा कह पाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अम्मा अम्मा जो कहता है अम्बा अम्बा के बदले, ये उसका अपभाषण है, माने वह असाधु शब्द है, अपभ्रंश है, फिर भी उसको सुन करके अव्यक्तम माने उसका जो अव्यक्त शब्द है अम्बा अम्बा के बदले जो अम्मा अम्मा कहता है, उस शब्द को सुन करके तद विधाम, तद विधाम माने साधु शब्द विधाम, साधु शब्द के जो जानकार होते हैं वो उस अव्यक्त शब्द को सुन करके ही जो है ना अर्थ का निश्चय कर लेते हैं कि यह बच्चा जो है अम्बा अम्बा कहना चाहता है लेकिन अम्मा अम्मा कहता है, और अम्मा अम्मा से अम्बा अम्बा अर्थ वह तदविद जो है माने साधु शब्द विद जो है वह समझ जाते हैं। तो अम्मा को सुनकर के अम्बा शब्द का स्मरण हुआ और अम्बा शब्द से माता अर्थ का स्मरण हो गया। 153वीं कारिका है, एवं साधु प्रयुक्तव्य यह अपशब्द प्रयुज्यते, इस तरह से साधु शब्द प्रयुक्तव्य होता है माने साधु शब्द का प्रयोग करना चाहिए, किंतु यह अपशब्द प्रयुज्यते, किंतु जो अपशब्द का प्रयोग होता है उससे तेन साधु व्यवहित कश्चित अर्थ अभिधीयत, इससे क्या होता है कि अपशब्द को सुन करके फिर साधु शब्द को स्मरण करते हैं, उसके बाद जो है कश्चित अर्थ अभिधीयते, किसी अर्थ का अभिधान होता है, इस प्रकार जो है ना साधु से व्यभिहित अर्थ का बोध होता है, साधु से अव्यभिहित अर्थ का बोध नहीं होता। साधु से व्यभिहित मतलब मध्य में जो है ना साधु शब्द रहता है, तब जा करके अपभ्रंश शब्द से बोध होता है। 154वीं कारिका है, पारंपर्यात अपभ्रंशा निर्गुणेशु अभिधातृषु प्रसिद्धिम आगता ये तो तेषां साधु अवाचकम्। कहा कि अब मूर्खों के बीच में जो है ना अगर आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्याकरण निष्ठ शब्द बोलेंगे तो मूर्खों को बोध नहीं होगा, मूर्खों को जो है ना अपभ्रंश शब्द बोलेंगे तो उससे ही उसको बोध होगा। वही यहाँ कह रहे हैं कि पारंपर्यात अपभ्रंशा, परंपरा से जो अपभ्रंश शब्द हैं, निर्गुणेशु अभिधातृषु, अभिधातृषु माने वक्तृषु, निर्गुण जो वक्ता है माने जिसको जो है ना व्याकरण का संस्कार नहीं है उसको, प्रसिद्धिम आगता ये तो, चूंकि उन मूर्खों में ये अपभ्रंश शब्द ही प्रसिद्धि में आ गए हैं, इसलिए तेषां साधु अवाच, इसके लिए उसको क्या होता है उल्टा होता है, उन मूर्खों को क्या होता है कि साधु शब्द ही अवाचक होता है और अपभ्रंश शब्द ही जो है उसके लिए वाचक हो जाता है, बोधक हो जाता है। 155वीं कारिका है, देवी बाग व्यवकीर्णेयम असक्ते अभिधातृभि अनित्य दर्शिनाम तस्मिन् बादे बुद्धि विपर्जयः। ताकि ये जो दैवी वाक है, संस्कृत वाक है, संस्कृत वाणी है, यह व्यवकीर्ण कर दी गई है, माने संकीर्ण कर दी गई है, अब इसको अपभ्रंश बना दिया है। किसने बनाया? अशक्तेह अभिधातृ भी। अशक्त जो अभिधाता है, अभिधाता माने वक्ता, अशक्त माने शक्ति से रहित। तो शक्ति से रहित जो वक्ता लोग हैं, उन्होंने दैवी वाक को जो है ना क्या कर दिया है, अपभ्रंश बना दिया है। अनित्य दर्शी नाम तस्मिन बाद ये बुद्धि विपर्जय। अनित्य दर्शी जो तार्किक लोग हैं, जो शब्द को अनित्य मानते हैं, वे उन सबों के बाद में माने सिद्धांत में बुद्धि का विपर्जय है, माने विपरीत बुद्धि है। विपर्जय माने विपरीत, विपरीत बुद्धि हो गई, अर्थात अपभ्रंश जो है वह साक्षात ही वाचक होता है, किंतु वे लोग जो है इसको परम्परया वाचक मानते हैं। अब लास्ट कारिका का है, उभयेषाम अविच्छेदेपि अन्य शब्द विवक्षया यह अन्य प्रयुज्यते शब्द न सह अर्थस्य अभिधायक। कहा कि उभयेषाम माने साधु शब्दानाम असाधु शब्दानाम च, साधु शब्द अथवा असाधु शब्द, उन दोनों का ही अविच्छेदे अपि माने अविनाशे सति एव, बिना विनाश हुए ही। अन्य शब्द विवक्षया, अन्य शब्द की विवक्षा करने से, यह अन्य प्रयुज्यते शब्द, जो अन्य अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं, न सह अर्थस्य अभिधायक, वह जो है अन्य अर्थ का विधायक नहीं होता। तात्पर्य ये निकला कि जो शब्द जिस अर्थ को बताने में सक्षम है, उसी अर्थ को वह शब्द बताता है, उससे भिन्न अर्थ में अगर प्रयुक्त करेंगे तो न सह अर्थस्य अभिधायक, वह शब्द जो है उस अर्थ का अभिधायक नहीं होता, वह बोधक नहीं होता। इसलिए जिस अर्थ की विवक्षा हो, उसी के अनुरूप जो है शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका जो है ना बाक्यपदी ग्रंथ का पाठ यहीं पर संपन्न होता है। यह ग्रंथ आप सबके लिए मंगलकारी हो, आप लोगों का कल्याण हो, इसी कामना के साथ आपका यह पाठ बाक्यपदी ब्रह्मकांड का यहीं पर संपन्न होता है। शुभानि सन्तु।